नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर गहराई से बात करने वाले हैं, नवयुग का मत्स्यावतार।
जी।
ये पुस्तक 1988 से 90 के दौरान लिखी गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक हिस्सा है और इसके प्रणेता हैं पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।
हाँ, वही गायत्री परिवार के संस्थापक।
बिल्कुल। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने इस पूरी साहित्य माला को अपना ज्ञान शरीर कहा था, मतलब विचारों का वो रूप जो हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माताजी से कहा भी था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा, सब बच्चों से कहिएगा कि मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
जी, ये उनका आग्रह था।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि पूज्य गुरुदेव की ये जो मत्स्यावतार वाली अवधारणा है उसे समझें, कैसे मतलब कोई छोटी सी शुरुआत एकदम विशार बन सकती है।
हाँ, और चेतना का इतना तीव्र विस्तार कैसे।
हाँ, खासकर उस संदर्भ में जिसे वो युग परिवर्तन कहते थे, एक बड़े बदलाव का समय। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं।
बिल्कुल। तो देखिए, इसकी जड़ में वो बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है ना, ब्रह्मा जी के कमंडल में एक छोटा सा कीड़ा।
हाँ हाँ मछली।
हाँ, मछली जो देखते ही देखते विराट रूप ले लेती है। पूज्य गुरुदेव इसे सिर्फ एक कहानी नहीं मानते थे, उनके लिए ये प्रतीक था पर ब्रह्म का।
अच्छा,
मतलब उस परम शक्ति का जो जरूरत पड़ने पर जब अव्यवस्था फैल जाए तो उसे व्यवस्था में बदलने, सृष्टि को संभालने के लिए खुद ही नियोजित होती है। और यही दिव्यता है जो उनके अनुसार तुच्छ को भी महान बना सकती है।
और जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ लगती है वो ये कि पूज्य गुरुदेव इस पौराणिक कथा को सीधे आज के समय से जोड़ देते हैं।
बिल्कुल।
वो कहते हैं कि जैसे उस मत्स्य का, उस मछली का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, वैसे ही आज भी, मतलब वर्तमान समय में भी, दैवीय चेतना से प्रेरणा लेकर,
एक उच्च शक्ति से जुड़कर।
हाँ, नकारात्मकता को हटाकर एक सकारात्मक समाज, एक जिसे वो देव संस्कृति कहते थे, वैसा नवयुग बन सकता है। ये सिर्फ धीरे धीरे सुधार नहीं बल्कि एक तीव्र परिवर्तन की बात है।
हाँ, और इस बात को, इस दावे को पुष्ट करने के लिए
जी
पूज्य गुरुदेव अक्सर अपने मिशन का उदाहरण देते थे। शांति कुंज और उससे जुड़े जो काम थे,
जी
उनकी उस समय की जो आश्चर्यजनक प्रगति थी, उनका तर्क था कि भाई इतने सीमित मानवीय साधन थे और उपलब्धियां इतनी बड़ी, जैसे अखंड ज्योति पत्रिका,
लाखों में छपना, करोड़ों तक पहुंचना।
हाँ, और हजारों पुस्तकों का लेखन, उनका वितरण, देशभर में हजारों प्रज्ञापीठों की स्थापना, ये सब सिर्फ इंसानी कोशिश से संभव नहीं लगता था। वो मानते थे कि इसके पीछे कोई अदृश्य चेतना काम कर रही थी।
पूज्य गुरुदेव ने इतिहास और पुराणों से भी तो उदाहरण दिए ना, जैसे राम की लंका विजय।
बिल्कुल, या पांडवों की कौरवों पर जीत।
हाँ, और बुद्ध का प्रभाव देखिए, गांधी जी का सत्याग्रह।
हाँ, वो यही दर्शाते थे कि ये जो महान परिवर्तन होते हैं, ये अक्सर हमारी मानवीय क्षमता से परे दिखते हैं। लगता है कि इनमें कहीं ना कहीं देवीय हस्तक्षेप है।
सही बात है।
तो यहाँ जो मुख्य विचार है वो है विस्तार का। जैसे मत्स्यावतार का उद्देश्य था श्रेष्ठता का विस्तार करना, वैसे ही नवयुग के निर्माण के लिए उनका मानना था कि सज्जनता और सत्प्रवृत्तियों का, अच्छी आदतों का व्यापक विस्तार जरूरी है।
और इसीलिए वो 1 से 5, 5 से 25 वाला सिद्धांत।
हाँ हाँ बिल्कुल, कि हर व्यक्ति अपने प्रभाव क्षेत्र को गुणात्मक रूप से बढ़ाए, सिर्फ खुद अच्छा ना रहे, दूसरों को भी प्रेरणा दे। लक्ष्य क्या था? करोड़ों सृजन शिल्पी तैयार करना।
जी, सृजन शिल्पी यानी ऐसे लोग जो समाज में सक्रिय रूप से अच्छा बदलाव लाएं, निर्माण करें, सृजन करें।
तो इस विस्तार को, मतलब सिर्फ विचार ना रहे, इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाए गए थे? हाँ बिल्कुल सुझाए गए थे, जैसे नियमित रूप से अच्छे विचारों पर बात करने के लिए मिलना जुलना, यानी सत्संग।
अच्छा,
छोटे छोटे स्टडी सर्कल, जिन्हें वो प्रज्ञा मंडल कहते थे, वो बनाना। फिर अपने साधनों का कुछ हिस्सा अंशदान और अपना कुछ समय समयदान समाज के लिए देना। और एक बहुत अनोखा तरीका था ज्ञान रथ।
ज्ञान रथ, वो क्या था?
मतलब चलती फिरती लाइब्रेरी, एक ठेले या साइकिल पर पुस्तकें रखकर बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के घर घर जाके ज्ञान पहुंचाना। ये उस समय करीब 4,000 रुपये में बन जाता था।
वाह, ये तो बहुत ही व्यवहारिक उपाय है।
जी,
तो ये सब तरीके थे अंशदान, समयदान, ज्ञान रथ, प्रज्ञामंडल, लेकिन इन सब के मूल में सबसे अहम क्या था?
इन सब के मूल में था ईश्वरीय चेतना से जुड़ाव। पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत बल देते थे कि ये जुड़ाव बाहरी नहीं, ये हमारे अंतःकरण में होता है,
अंदर से।
हाँ, मन और बुद्धि की गहरी परतों में। और यही जुड़ाव है जो व्यक्ति को क्षुद्रता, छोटी सोच से निकालकर महानता की ओर ले जाता है।
और इसके लिए क्या करना होता है?
इसके लिए नियमित साधना बहुत जरूरी बताई गई है, और शांतिकुंज जैसे जो प्रेरणा स्थल हैं, वहां से जाकर ऊर्जा प्राप्त करना, जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं ना।
हाँ हाँ बिल्कुल,
वैसे ही ये इस पूरी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।
तो अगर हम सार देखें तो नवयुग का मत्स्यावतार असल में दैवीय प्रेरणा से होने वाले तीव्र सकारात्मक परिवर्तन और विस्तार की जो संभावना है उस पर बल देता है।
जी।
ये एक तरह से व्यक्तिगत पुरुषार्थ को, हमारी अपनी कोशिशों को ईश्वरीय इच्छा से जोड़ने का आवाहन है, ताकि वो लक्ष्य भी पाए जा सकें जो शायद असंभव लगते हों।
हाँ बिल्कुल, और ये अपने पीछे ना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ जाता है।
क्या?
कि जब कोई विचार या कोई आंदोलन इतनी तेजी से फैलता है तो क्या वो केवल अच्छी संगठनात्मक रणनीति और मेहनत का ही परिणाम होता है, या फिर उसमें आस्था का और एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास का भी कोई निर्णायक रोल होता है? शायद दोनों का संतुलन होता है। इस पर विचार करना वाकई सार्थक होगा।